Shanti. आप सभी बाबा के लाडले बच्चे दिल तख्त नसीन बच्चे हो, क्यों? क्योंकि त्रिकालदर्शी बाप जो तीनों कालों को जानता है, कल क्या होने वाला है वो बाप जानता है। हमारे तीनों कालों को जानता है, तो ऐसा त्रिकालदर्शी बाप हम आप सबको गाइड के रूप में मिला है। समय के अनुसार आगे क्या होने वाला है बाप जानने के कारण हम बच्चों को पहले से ही इशारा दे देता है। सिर्फ त्रिकालदर्शी ही नहीं, लेकिन साथ साथ रहम दिल भी है। तो वो घड़ी आए जिसके लिए बाबा इशारा दिया, उससे थोड़ा पहले ही बता देता है कि बच्चे तैयारी करके संपन्न बन जाओ। तो अभी आप 31 दिसंबर वाली जब मुरली चली, लास्ट में बड़े भाई अपने बाबा से पूछा, बाबा ये नया बरस आ रहा है 2018, तो इस बरस को किस रूप में मनाएं? जैसे कभी बाबा कहता है तपस्या रूप में मनाओ, कभी सद्भावना रूप में, कभी कल्याणकारी रूप में, तो बाबा ने कहा इस बरस को समापन बरस मनाओ। तो जब बोला समापन बरस मनाओ, तो प्रश्न है क्या इसी साल में सब समाप्त हो जाएगा? क्योंकि भगवान ने जो कहा वो तो होना ही है। गॉड इज ट्रुथ, भगवान सत्य है, बोलता सत्य है। तो उसका कहा हुआ खाली तो जा नहीं सकता, लेकिन जैसे पहले आपको बताया कि भगवान रहम दिल होने के कारण थोड़ा पहले इशारा दे देता है कि बच्चे पुरुषार्थ करके संपन्न बन जाएं, तो कोई इसी साल में विनाश नहीं हो रहा है। लेकिन जब इस साल से फुल अटेंशन दे देंगे। किन बातों पर आगे बताते हैं, जब उस पर फुल अटेंशन दे देंगे तब अपना समापन वर्ष वाह रे मैं, वाह बाबा, वाह ड्रामा करके बीतेगा। अगर हमने अटेंशन नहीं दिया तो वाह के बदले हाय होगा, हाय मैंने ऐसा क्यों किया, हाय मैंने अलबेलेपन में समय क्यों गंवाया, हाय मैंने बाबा का इशारा क्यों नहीं समझा, हाय हाय करना पड़ेगा। और अगर आत्मा ने हाय हाय करते हुए दुखी होकर शरीर को छोड़ा तो अंतमते सागते आपको पद भी हाय हाय वाला ही मिलेगा। नौकर चाकर चंडाल प्रजा यही बनेंगे, राजा महाराजा नहीं बन पाएंगे। इसलिए बाबा अभी से ये इशारा दे रहा है, बच्चे अटेंशन देकर अपने को संपन्न बना लो। तो किस बात पर हमें अटेंशन देना है, किन किन बातों को समाप्त करके आत्मा को संपूर्ण बनना है, तो तीन बातें हैं जो हमें समाप्त करनी है, उसमें समापन बरस मनाना है। पहली बात है सेवा का विस्तार, दूसरी बात है कमी और कमजोरियों की समाप्ति, तीसरी बात है चेक करके कि बाबा के अलावा कहाँ बुद्धि जाती है, उसको रिटर्न करके एक बाप दूसरा न कोई इस स्थिति में स्थित होना है। तो पहली बात है सेवा का विस्तार। आजकल ब्राह्मण आत्माओं में सेवा का विस्तार इतना कर दिया है कि अगर योग में बैठते हैं तो भी सेवा ही याद आती है, जबकि आपका पेपर सेवा का नहीं है, आपका पेपर है अंत में मरते समय बाबा के अलावा और कोई याद नहीं आए। सेवा व्यक्त है, अगर सेवा याद आ गई तो फेल हो जाएंगे। इसलिए सेवा भी न याद आए, अंत में बाबा याद आए, वो तब होगा जब बहुत समय से एक पाप दूसरा न कोई इस स्थिति में अटेंशन और अभ्यास ये दोनों चल रहा होगा तो, अगर अटेंशन और अभ्यास में कमी पड़ी तो एक बाप दूसरा न कोई पक्का नहीं हो पाएगा। सेवाओं के विस्तार का मतलब ये नहीं कि सेवा नहीं करनी है, लेकिन सेवा करते हुए उपराम स्थिति रहे, जब आप चाहें तब आप बाबा की याद में स्थित हो जाएं, जब चाहें तब सेवा का संकल्प चलाएं, जब चाहें परम धाम या सूक्ष्म वतन की स्थिति बना ले। सेवा करनी है लेकिन उपराम होकर सेवा करनी है। ये इस साल बहुत अभ्यास बढ़ाना है। जब इस अभ्यास को बढ़ाएंगे, कोई तुरंत नहीं हो जाएगा, तब विनाश तक आपकी बुद्धि बाबा में एकाग्र रहेगी। उपराम किसे कहा जाता है? उपराम का अर्थ है, एक एग्जाम्पल के लिए गुलाब का फूल है, ये उपराम का सैंबल है। कमल का फूल न्यारा रहने का सैंबल है, लेकिन गुलाब का फूल उपराम रहने का सैंपल है। सेवा करते हुए, परिवार में रहते हुए, लेकिन उपराम, जैसे देखो आप लोगों ने गुलाब का फूल देखा होगा, उसकी तीन विशेषता है जो और किसी फूल में नहीं है। वो तीन विशेषता आप गुलाब का फूल देखा होगा कि जब पूरा खिल जाता है, पूरा, तो जरा सा ऐसे हिलाओ उसके सारे पत्ते गिर जाते हैं। और किसी फूल के पत्ते, फूलों की पंखड़ियां, और किसी भी फूल की गिरती नहीं है, मुरझाती है लेकिन गिरती नहीं है। अर्थात फूल में था लेकिन सेकंड में फूल से न्यारा हो गया। अर्थात हम परिवार में थे या अलौकिक सेवा कर रहे थे, सेकंड में सब कुछ भूल कर, बस जैसे मेरा कोई है ही नहीं, मैं आत्मा और मेरा बाबा, इस स्थिति में स्थित हो जाए। जैसे फूल सेकंड में पत्ते झड़ जाते, दूसरी कमल के फूल की विशेषता, कमल के फूल में कभी भंवरा नहीं बैठता है, और फूलों में मधुमक्खी भी बैठेगी और सब बैठेंगे, लेकिन इसमें मधुमक्खी भी नहीं बैठती। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि ये गुलाब की शहद बनी है। शहद गुलाब की नहीं बनती, बैठता ही नहीं। अर्थात परिवार में रहते हुए, सेवा में रहते हुए, ना कोई मेरा है ना मैं किसी की हूं, सब मेरे हैं, मैं सब की हूं, सब बाबा के हैं, मैं भी बाबा की। जिसको जानकी दादी कहती है, ना कोई मेरे ऊपर प्रभावित हो ना मैं किसी के ऊपर प्रभावित हो, ना चटको ना लटको ना अटको, बस एक पाप दूसरा ना कोई। तीसरी गुलाब के फूल की विशेषता, जब उसकी पंखड़ियां झड़ जाती हैं तो बीच में बचता है बूर, इतना छोटा सा। अर्थात सेवा करते हुए, सेवा के क्षेत्र में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, सदा आत्मक स्थिति में रहना और आत्मक स्थिति में सबको देखना, उसी स्थिति से व्यवहार में आना, आत्मक स्थिति। ये मेरी बहन है या मेरी भाभी है, माँ है, सास है, ये नहीं। माँ, सास, बहन, ये तो सब जब आप रावण के बच्चे थे तब उस फैमिली के हैं। आप तो जीते जी मर चुके हैं, बाबा के बन चुके हैं। अब आपका सर्व संबंधी बाप दादा है, वही आपका माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, सास बहू, नाती पोत्रा धोत्रा, सब कुछ बाप दादा है। तो सबको देखते हुए इस नजर से देखो कि ये भी आत्मा है, भल जानते हो बहू है, सास है, जानते और है, लेकिन देखते हुए आंतरिक स्थिति रहे, ये आत्मा है, शिव बाबा का बच्चा है, ये आत्मा है, शिव बाबा का बच्चा है। आंतरिक स्थिति ये, ऊपर से तो जो रिश्ता है उस रिश्ते को बोलना ही है। ऐसे नहीं किसी को कहेंगे हे आत्मा इधर आओ, नहीं, रिश्ता तो जो है वही है, लेकिन आंतरिक स्थिति रहे, नहीं ये भी आत्मा है, बाबा का बच्चा है, शिव बाबा का बच्चा है। इससे आप देखेंगे इतना अलौकिक प्यार अज्ञानियों में आपका जाएगा कि वो आपको बहुत महान मानने लगेंगे। किसी को भगवान का बच्चा समझना और सच्चे दिल से एक्सेप्ट कर रहे हो तो वो वाइब्रेशंस उस तक पहुंच रहा है। भगवान का बच्चा समझना कितनी महान बात है। सास बहू तो कॉमन चीज है, भगवान का बच्चा है, शिव बाबा का बच्चा है, इस स्मृति से समझना। आजकल दुनिया में ऐसे कह देते सब भगवान के बच्चे, सिर्फ कहने के लिए कह देते। लेकिन जब आप उस स्थिति में रहकर देखेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, तो देखो उसका क्या असर पड़ता है। आपको देवी या देवता के रूप से मानने लगेंगे। कोई कोई तो कह देगा ये तो भगवान का जैसे अवतार है। तब घर गृहस्थ में रहते हुए आपकी प्रत्यक्षता और बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तो सेवा करना है, परिवार में रहना है, लेकिन अलौकिक बनकर, न्यारे बनकर, उपराम बनकर। जब अभी से ये अभ्यास बढ़ाएंगे तब जब विनाश होगा, जितने समय में होगा उतने समय तक आप तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने भगवान का कहना माना, उनकी आज्ञा की पालना की, तो अगर कुछ कमी रह गई तो भगवान एक्स्ट्रा मार्क्स देकर आज्ञाकारी का फल के रूप में आपको संपूर्ण बना देगा। दूसरी बात है कमी और कमजोरियां। कमी है दिव्य गुणों की और कमजोरी है याद के यात्रा की। तो दिव्य गुणों की जो कमजोरी है, अभी तक ब्राह्मण आत्माओं में देवताओं जैसी फजीलत या विशेषता या गुण अभी ब्राह्मणों में 10% ही दिखाई पड़ते। अभी जोर से बोलना, जोर से हंसना, रफ डफ बोल देना, किसी की इंसल्ट कर देना, ये जैसे अभी कामन है। जबकि देवताओं की भाषा कितनी मीठी होती है। कहा गया है ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। आप खुद जब बाबा की याद में होते हैं, अव्यक्त स्थिति होती है, तो आपकी भाषा कैसी होती है उस समय, कितनी मीठी होती है, कितनी धैर्यवत होती है। तो फरिश्ता ही देवता बनेंगे, अर्थात देवताओं की भाषा भी यही। देवताओं की विशेषता है बोलने में, देखने में, करने में। देवता अर्थात दाता, सबको कुछ न कुछ उनके द्वारा मिलता है, प्रेम, प्यार, स्नेह, सम्मान स्वतः मिलता है। देवताओं की मूर्तियों के आगे जाकर सब कुछ प्राप्त करते हैं, मिलता है जैसी भावना वैसा। आज देखो एक स्थूल रूप में सूर्य है, पवन है, इन सबको भी देवता कहते हैं। सूर्य देवताय नमः, पवन वायु देवताय नमः, देवता कहते हैं। क्यों देवता कहते हैं? जैसे देखो ये लाइट है, बिजली, तो जो चीज सूर्य देता है वो सब चीजें लाइट भी देती है, रोशनी भी देगी, सब कुछ देती है जो सूर्य की रोशनी से मिल सकता है, देती है लाइट। लेकिन सूर्य को देवताय नमः कहा है, बिजली देवताय नमः, बिजली देवी नमः कोई नहीं कहता है। क्यों? जबकि सेम देती है, अंतर सिर्फ ये है कि सूर्य रोशनी देता या जो भी देता है फ्री में देता है और ये बिल ले रही है। अगर बिल ना दो तो इतनी भी लाइट नहीं देगी। तो ये लेती है, इसलिए देवी या देवता नहीं है। सूर्य देता है, पवन देता है, इसलिए उसको देवता कहा जाता है। तो देवता की दूसरी विशेषता दाता है। लेकिन देवताओं की चाल चलन बोल बहुत मीठे होने चाहिए, बहुत रायल होने चाहिए। साकार बाबा के समय अगर कोई बच्चा चलता था और उसका जूता या चप्पल जरा सा आवाज कर दे, खट पट घिस पिस कुछ भी जरा सा आवाज कर दे, तो बाबा कहता था ये ब्राह्मण नहीं, मनुष्य है, मृत्यु लोक का मनुष्य है। और मम्मा कहती थी कि जिसका चप्पल घिस पिस है रायल्टी से चल ही नहीं सकते हैं, वो रायल पद क्या पाएंगे, उनका पद भी घिसा पिटा ही होगा। आपको खुद अनुभव होगा कि जब बाबा की याद में चलते हैं तो आपकी चलन कैसी होती है, कितना शांत धीरे गंभीर होकर चलते, जूता चप्पल की भी आवाज नहीं होती। लेकिन वही जब बाबा याद नहीं है तब चलते हो तो देखो कैसा है, अंतर है। तो दैवी गुण धारण करने में अटेंशन कम क्यों है? इसका तीन कारण है। एक, दैवी गुण की विशेषता क्या है वो नहीं जानते, महानता क्या है। दूसरी बात, समय की वैल्यू नहीं है, क्योंकि दैवी गुण अभी ही धारण किए जा सकते हैं, बाकी पूरे कल्प पे कभी भी नहीं। अभी धारण किया, आधा कल्प देव रूप में, आधा कल्प में आपकी पूजा होगी, पूज्य रूप में रहेंगे। और तीसरी बात है, कि दैवी गुण भगवान का बरसा है, मेरा बरसा है, जन्म सिद्ध अधिकार है, ये अंदर से बार बार रिवाइज नहीं करते। तो दैवी गुणों की महानता न होने के कारण स्वयं में उसको धारण करने पर अटेंशन नहीं दे रहे। गुण की कितनी बड़ी महानता है, आप लौकिक दुनिया में देखो, कोई एक गुण धारण कर लेता है उस दुनिया के हिसाब से। मान लो वो अनाज खाना छोड़ देता है, सिर्फ फल खाता है, तो फलाहारी बाबा के नाम से फेमस हो जाता है, उसके कारण उसकी इतनी पूजा होने लगती है। कोई सिर्फ बोलना छोड़ दे तो मौनी बाबा के नाम से फेमस हो जाता है, सब उसके पांव पड़ते हैं, चढ़ावा चढ़ाते। जबकि कोई दैवी गुण है भी नहीं, मात्र थोड़ा सा है। और आप अगर दैवी गुण धारण करो तो कितने वैल्यूएबल बन जाओगे। देवता तो है इस जीवन में, अभी हम सबको लोग क्यों खराब समझते हैं, क्योंकि हमारे अंदर दैवी गुण दिखाई नहीं पड़ते हैं। अभी हमारा बोल चाल व्यवहार दुनिया जैसे ही है, इसलिए खराब समझते। लेकिन अगर चलन में दिव्यता आ जाए तो आपकी बहुत बड़ी महानता हो जाएगी इस जीवन में, ब्राह्मण जीवन में। देवताई जीवन में तो है ही है, देवताई जीवन तो आपकी परछाई है, वो तो मिलना ही मिलना है। तो जो कमी है वो दिव्य गुणों की तरफ धारणा की बहुत कमी है, इस पर अटेंशन दें। बिना दिव्य गुणों की धारणा के योग लग नहीं सकता। जैसे एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं, आप लोग क्लास में आते हो, सेंटर पर मुरली सुनने आते हो, मुरली मान लो 7 बजे शुरू होनी है, आप अपने घर से 7:45 या थोड़ा टाइम बाकी आप निकलते हो, खूब फास्ट चल करके आते हो, टाइम पर पहुंचना है। आ करके क्लास में बैठते हो, क्या उस समय आपकी ये स्थिति बन पाएगी कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं? क्या आप अपने स्वधर्म में टिक पाएंगे? आए हैं तो फट फट करके आए हैं, मन की भी हलचल, तन की भी हलचल, तो क्या क्लास में बैठकर शांति की स्थिति बन पाएगी? और अगर शांति की स्थिति नहीं बनी, सफेद लाइट हो गई, तो मुरली की पॉइंट एक भी बुद्धि में नहीं बैठेगी। क्योंकि जिन संकल्पों में आए हो फास्ट, वही संकल्प बार बार मन के अंदर रिवाइज होते रहेंगे। आप चाहोगे नहीं, वो अपने आप आएंगे। जैसे देखो जो खेत होता है, अगर बारिश पड़ती है, आप उसमें अगर बीज ना बो, खेत को खाली छोड़ दो, तो घास तो अपने आप ही निकल आती, अपने आप घास आ जाएगी। ऐसे जब आप आते समय मन को श्रेष्ठ संकल्प नहीं दिया है, शांत स्थिति में बाबा की याद में नहीं आए हैं, तो फिर क्लास में बैठते ही मन को खाली छोड़ के आए हैं बाबा के ज्ञान से, बाबा की याद से, व्यर्थ सोचते आए हैं, तो खाली मन में तो व्यर्थ अपने आप ही आ जाएगा। इसलिए दिव्य गुणों की तरफ अटेंशन दो, नहीं तो योग भी नहीं लगेगा। योग नहीं लगा तो दिव्य गुणों की धारणा होगी ही नहीं। आप कुछ भी कर लो, अगर योग नहीं लगा और सोचो हम धीरे से बोलें, मीठा व्यवहार करें, हो ही नहीं सकता। इसलिए इस चीज पर दिव्य गुणों की तरफ अटेंशन दो अभी से, तो अंत में विनाश तक आप संपूर्ण दैवी गुण धारण करके सतयुग में चलकर संपूर्ण स्वरूपधारी श्री कृष्ण के साथ जन्म लेकर उनके साथ खेलेंगे, कूदेंगे, उन्हीं के साथ राज करेंगे। जब संपूर्ण गुण धारण कर लेंगे, बनना तो हम आप सबको ही देवता है। कल्प पहले देवी या देवता बने थे, गुण आप में भरे हुए हैं, सिर्फ मर्ज हैं, इमर्ज करो बस। बने थे देवी या देवता या नहीं, बने थे ना, तो दिव्य गुण हैं तो जरूर तभी तो बने थे, तो हैं, आत्मा वही है, सिर्फ मर्ज है, उसको इमर्ज करो। इमर्ज करते करते स्वरूप बन जाएगा। और कमजोरी है याद के यात्रा की, वो हर एक समझता है कि मेरा कितना योग लगता है और कितना हम योग करते, सब जानते। आपको सेंटर पर कहा जाए 4 घंटा सेवा करो तो वो तो फिर भी कर दोगे, और कहा जाए 4 घंटा बैठकर योग करो, है संभव योग करना 4 घंटा? सोचो, अमृत वेले उठने की कमी है, कई तो 4 से 4:45 उठते ही नहीं हैं। तो याद के यात्रा की बहुत कमजोरी है, जबकि इसी में ही कमाई है, इसी में ही प्राप्ति है। तो हमारी याद की यात्रा बढ़े कैसे, उसकी 3 विधि है। हम याद की यात्रा को बढ़ा ले, पहली बात है। अशरीरी होने का अभ्यास जितना आत्मक स्वरूप में टिकते जाओगे उतना बात की याद स्वतः रहेगी। पहला अशरीरी होने का अभ्यास, दूसरी बात बाप के साथ सच्चे दिल का प्यार, बाप के साथ सच्चे दिल का प्यार, और तीसरा बाप के साथ सर्व संबंध अर्थात बाबा ही हमारा संसार है। संसार में दो ही चीज है, व्यक्ति और वस्तु। जो वस्तु से सुख मिलता है बाप की याद में लो, जो संबंधों से सुख मिलता है व्यक्तियों से, वो बाप के साथ संबंध जोड़कर सुख लो। बाबा ही संसार है। तो पहली बात अशरीरी होने का अभ्यास, मैं आत्मा हूं, ये तो जब से आप ब्राह्मण बने हैं तब से इसका अभ्यास कर रहे हैं कि मैं आत्मा हूं। लेकिन कितनी आत्मक स्वरूप की स्थिति अभी तक आई है वो आप स्वयं जानते। क्यों नहीं आत्मक स्वरूप की स्थिति आ पाती है? इसका कारण है कि आत्मा की जो चार स्थितियां हैं उन चारों स्थितियों का जब तक आप अभ्यास चारों की नहीं करेंगे तब तक आत्मक स्वरूप में निरंतर टिक नहीं सकते हैं। वो चारों स्थिति है आप बाबा की मुरली में सुनते हैं। पहला देही अभिमानी, दूसरा आत्म अभिमानी, तीसरा विदेही, चौथा अशरीरी। सुनते हैं ना चारों शब्द ये? देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, विदेही और अशरीरी। जब ये चारों का अभ्यास करते रहेंगे, क्योंकि चारों अलग अलग टाइम पर है। देही अभिमानी अर्थात कर्म करते हुए, कर्म इंद्रियों का आधार लेते हुए, देह के भान से न्यारे, देही स्वरूप में स्थित, अर्थात मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करा रही हूं या कर रही हूं। भान आत्मा का रहे इसका नहीं, मैं हूं ही आत्मा, ओरिजिनल स्वरूप में आत्मा हूं, इन कर्म इंद्री के द्वारा कर्म कर रही हूं या करा रही हूं। तो कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए देही अभिमानी, कर्म करते देह का भान नहीं, भान आत्मा का रहे, लेकिन करना देह के द्वारा है। दूसरा है आत्म अभिमानी। जब आप बाबा की याद में बैठते हैं, तब आपको देह की स्मृति की जरूरत नहीं है। कर्म में तो देह की स्मृति का आधार है। मैं आत्मा हाथों के द्वारा कर्म कर रही हूं, हाथ की स्मृति है। लेकिन जब आप याद में बैठे हैं, योग में बैठे हैं, उस समय देह की स्मृति की जरूरत नहीं है। जो सांस चलती, जो क्रिया है, वो अपने आप चलती रहेगी। तो याद में बैठते समय आत्म अभिमानी, मैं हूं ही आत्मा, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूं, प्रकाश स्वरूप हूं, इस कॉन्शियस में बैठकर बाबा को याद करें। आत्म अभिमानी। और जब आप चलते फिरते उठते बैठते कोई न कोई सोमान में रहो, सोमानधारी। सोमान देह अभिमान को भुला देगा। कोई भी सोमान, मैं शिव शक्ति हूं, ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार हूं, भगवान का राइट हैंड हूं, राज ऋषि हूं, कोई भी सोमान में रहो, तो जैसा आप अपने को समझेंगे, जो समझेंगे, वैसे आपकी दृष्टि वृत्ति कृति स्वतः ही हो जाएगी। जब आप समझेंगे मैं शिव शक्ति हूं, तो जो समझोगे वही सामने वाला दिखाई पड़ेगा। बिना खुद के स्वरूप में आए सामने वाला वो दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए जो अपनी स्थिति बनाओ स्वतः दिखाई पड़ेगा। तो उठते बैठते चलते फिरते कोई न कोई सोमानधारी। इसके बाद है अशरीरी। जब आप परम धाम में हैं तो वहां शरीर नहीं है। आप बीच बीच में अपने को परम धाम निवासी बनाओ, जहां आवास नहीं, कोई दे दे के संबंध नहीं, बस आत्मा और मीठा बाबा परम आत्मा। एकदम परम धाम में बैठ जाओ। ये बीच बीच का अभ्यास आपको अंत में शरीर छोड़ते समय बहुत मदद देगा। निसंकल्प बाबा की याद में बैठे बैठे बस बाबा के पास बैठ जाएंगे, ऐसी आत्मा पास विद आनर बन जाएगी। तो आप सब अभ्यास जब अभी से बढ़ाएंगे, तब अंत अंतिम समय में इस पेपर में पास हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।